राजवीर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसके आदमी ने उसे चाहत की फोटो भेजी। चाहत के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद राजवीर ने उसे पहचान लिया था। चाहत कोई और नहीं, उसी की बेटी थी। चाहत और आहान को साथ में देखकर राजवीर को उनके बचपन की बातें याद आने लगीं। बचपन में जब चाहत को पार्क में लेकर गया था, चाहत के साथ आने की वजह से राजवीर काफी गुस्सा था। उसने उसे एक बेंच पर बैठाया और आइसक्रीम लाकर दी। फिर उसने चाहत से सख्ती से कहा, मैं अभी एक डेढ़ घंटे में आ जाऊंगा। खबरदार जो यहां से उठकर कहीं भी गई, मुझे तुम्हें ढूंढने में थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ी तो अच्छा नहीं होगा। चाहत ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया और आइसक्रीम खाने लगी। वो लगभग 7 साल की थी। कंधे से थोड़े लंबे बाल जो उसने खुले कर रखे थे और आगे छोटी चोटियां बनाकर उनमें बीड्स लगाए गए थे। उसने ब्लू कलर के शॉर्ट्स और ऊपर पिंक टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे पिंक शूज। चाहत राजवीर को दूर जाते हुए देख रही थी। वो धीरे से बोली, पापा हमेशा मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इससे अच्छा वो मुझे बाहर लेकर ही ना आए ना, मैं मम्मा के साथ अकेली रह लेती। चाहत वहां बैठकर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसका भी बहुत मन कर रहा था कि वो उनके साथ जाकर खेले, लेकिन राजवीर ने उन्हें सख्त मना किया था। उन्हें खेलते हुए देखकर चाहत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी एक बॉल उछलकर उसके पास आई और चाहत की आइसक्रीम नीचे गिर गई। चाहत की आइसक्रीम भी गिर गई थी और उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। वो रोने लगी थी। उसने सुबकते हुए कहा, पापा ने देखा तो बहुत डांटेंगे। पिछली बार उनकी बात नहीं मानी थी तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। नहीं, मुझे मार नहीं खानी है, मैंने ये नहीं किया है। चाहत वहां खड़ी रो रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आया जो उम्र में लगभग 13 साल का था। उसने ब्लैक पैंट्स और ऊपर व्हाइट लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी। उस लड़के ने बॉल उठाई और सामने की तरफ फेंककर जोर से चिल्लाकर कहा, अगर खेलने का इतना ही मन कर रहा है तो किसी खाली जगह पर जाकर खेलो। इस तरह छोटे बच्चों को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आगे से तुम्हारी बॉल किसी भी बच्चे को जाकर लगी तो तुम्हारी बॉल को फोड़ दूंगा और तुम लोगों को इतना पीटूंगा कि घर वाले शक्ल तक नहीं पहचान पाएंगे। उस लड़के से डरकर दूसरा बच्चा बॉल उठाकर चला गया। फिर उसने चाहत की तरफ देखा जो उसे रोते हुए मासूमियत से देख रही थी। वो लड़का वहां से गया और दूसरी आइसक्रीम लेकर आया। उसने आइसक्रीम चाहत की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरा नाम आहान है, तुम्हारी आइसक्रीम नीचे गिर गई थी ना, तुम ये वाली खा लो। थैंक यू सो मच, पर मम्मा ने कहा है कि किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ लेकर नहीं खाना है, चाहत ने अपने आंसू साफ करके कहा। आहान ने चाहत के चेहरे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, लेकिन मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूं, मैं तुम्हें रोज यहां देखता हूं। लेकिन मैं रोजाना यहां नहीं आती हूं, चाहत ने मासूमियत से कहा। हाँ, तो जब भी तुम आती हो मैं तुम्हें देखता हूँ, यहाँ अकेले इसी बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाती रहती हो, आहान ने जवाब दिया। फिर उसकी नज़र चाहत के कपड़ों की तरफ गई जो कि आइसक्रीम गिरने से गंदे हो गए थे। उसने चाहत से कहा, उधर पानी की टेप लगी हुई है, चलो मैं तुम्हारे कपड़े साफ कर देता हूँ। आहान ने आगे बढ़कर चाहत का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन चाहत कुछ कदम पीछे होकर बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, पापा ने यहाँ से हिलने से मना किया है, अगर मैं यहाँ से गई तो फिर वो, चाहत बोलते हुए चुप हो गई। फिर वो तुम्हें मारेंगे, आहान ने भौहें उठाकर गुस्से से कहा। वो फिर धीरे से बड़बड़ाकर बोला, सारे डैड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बुरे, बहुत ज्यादा बुरे, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। चाहत आहान के सहरे की तरफ देखकर उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे टेप की तरफ ले जाने लगा। आहान ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और फिर उसे गीला करके चाहत के कपड़े साफ करने लगा था। अब ये बिल्कुल ठीक है, आगे से तुम्हें पार्क में कोई भी परेशान करे तो तुम मेरे पास आना, यहाँ सब मुझसे डरते हैं, आहान ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। पहली मुलाकात में ही आहान ने चाहत को काफी सिक्योर फील कराया था। कपड़े साफ हो जाने के बाद चाहत ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरा नाम चाहत है, लेकिन मैं तुम्हें डॉल कहूंगा, तुम मेरी डॉल बनोगी? आहान ने चाहत की आंखों में देखकर कहा। ओके, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? चाहत बोली। फिर उसने आहान की आंखों में देखकर कुछ पल रुक कर कहा, बदले में मैं तुम्हारी डॉल बन जाऊंगी। ओके डन, वैसे फ्रेंड तो मेरा भी कोई नहीं है, पर मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लेना, मैं अपने दोस्तों को कभी खुद से दूर नहीं होने देता हूँ, आहान ने हाथ मिलाने से पहले कहा। ठीक है, फिर प्रॉमिस, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, अगर दूर भी गई तो तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी, चाहत ने कहा और फिर जबरदस्ती आहान का हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद से आहान और चाहत लगभग पार्क में रोज मिलते थे। राजवीर चाहत को पार्क में घूमने के बहाने लेकर आता था और फिर उसे वहां पर छोड़कर अपने काम पर चला जाता था। एक दिन उसे चाहत और आहान की दोस्ती के बारे में पता चल गया था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर आहान पूरी तरह उसके काबू में जो था। पुरानी बातें याद करते हुए राजवीर ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, किसे पता था कि बचपन में जब तुम दोनों एक साथ खेलते हुए एक दूसरे से ना बिछड़ने का प्रॉमिस करते थे, बड़े होने के बाद वो सच साबित होने वाला था। क्या तुम दोनों को अपना पास तैयार है या किस्मत ने ही तुम दोनों को फिर से मिलाया है? पता करना पड़ेगा सब कुछ। राजवीर अपने घर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ आहान और चाहत अपने बेडरूम में थे। आहान चाहत को सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहत को नींद नहीं आ रही थी। आहान ने उसे थोड़ा इरिटेट होकर कहा, डॉल अब तुम्हें सो जाना चाहिए, रात के 1 बजने को आए हैं और तुम्हारी बातें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। कैसे खत्म होगी, आखिर इतने दिनों बाद आपसे बात करने को मिला है, आपको कुछ याद नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाऊं, चाहत ने आहान की तरफ देखकर कहा। फिर उसने आहान के गाल पर हल्का सा किस किया। अपने फर्ज तुम दिन में निभाती रहना, मुझे इस वक्त नींद आ रही है, आहान ने आंखें बंद करके कहा। आहान की इस हरकत पर चाहत का मुंह बन गया। वो उसके कंधे पर हल्के से मारकर बोली, बहुत बुरे हो आप, ऐसे तो बोलते हो कि हमेशा साथ रहूंगा, छोटे मोटे काम के लिए मुझे बोलती रहा करो, और अब आप मेरे लिए जाग भी नहीं सकते हो। आहान ने आंखें खोली और फिर आइज रोल करके कहा, जाग सकता हूँ लेकिन तुम कोई अच्छी बात करो तब ना। क्या कब से एक ही बात की रट लगा रखी है कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की, वो हमारे बच्चे होंगे डॉल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की। हाँ तो थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाइए ना, ऐसा लगता है कि इस बच्चे को लेकर मैं ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, चाहत ने जवाब दिया और फिर उठकर बैठने लगी। आहान भी उसके साथ में उठकर बैठ चुका था। उसने चाहत का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे सहलाते हुए कहा, खुश तो हूँ लेकिन साथ ही इस बात का डर भी है कि मैं एक अच्छा बाप बन पाऊंगा या नहीं। विजय ओबरॉय को देखकर डर लगता है कि कहीं अनजाने में मैं अपने बच्चों के साथ वो सब ना कर दूं जो उसने मेरे साथ किया। मेरा यकीन मानिए आहान, आप एक बहुत अच्छे डैड बनेंगे। विजय ओबरॉय तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे, चाहत ने मुस्कुराकर कहा और फिर आहान का हाथ अपने पेट पर रख दिया था। चाहत की डिलीवरी होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था इसलिए बच्चे की मूवमेंट्स काफी बढ़ गई थी। आहान ने जब उसे फील किया तो उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो चाहत से बोला, ये तो बहुत शैतान है, तुम्हें बहुत तंग करता होगा ना।
चाहत ने हाँ में सिर हिला दिया। आहान उसे परेशान करने के लिए बोला, अच्छा तो इसका बदला तुम मुझसे ले रही हो, ये तुम्हें तंग कर रहा है तो तुम बदले में मुझे परेशान करने लगी, दिस इज वेरी बैड डॉल, चलो अब बहुत हो गया, आओ सोते हैं। अपनी बात खत्म करके आहान ने चाहत को अपनी बाहों में लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों नींद के आगोश में थे। दूसरी तरफ बेसमेंट में दामिनी और विजय को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों इतने कम दिनों में ही परेशान हो चुके थे। दामिनी को अपनी बेटी वामिका की याद आ रही थी तो विजय वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। दामिनी ने विजय के पास आकर कहा, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। मैं पहले भी आहान के कैद में रह चुकी हूँ, तब इतनी डिसअपॉइंट नहीं होती थी जितना अब हो रहा है। ऐसे लगता है कि यहाँ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दामिनी, अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है, कोई रास्ता निकालना होगा, विजय ने परेशान स्वर में कहा। उसके बाद वो उठकर एक रोशनदान की तरफ गया जो कि खुला था। आसपास से उसे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने दामिनी की तरफ देखकर कहा, मार तो वो हमें वैसे भी देगा, तो चलो आज एक रिस्क लेते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। दामिनी कुछ भी करने से हिचकिचा रही थी लेकिन विजय ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले जाते हुए बोला, ऐसे तो बहुत हिम्मत वाली बनती हो, और आज थोड़ा सा हिम्मत दिखाने को कहा तो भीगी बिल्ली बन गई। मैंने आहान के आदमियों को इस रास्ते से अंदर आते देखा है, मतलब जरूर दूसरी तरफ एक दूसरा रास्ता बना हुआ है। विजय दामिनी को लेकर दूसरी तरफ गया। उसका अंदाज़ा सही था, वहाँ एक और रास्ता बना हुआ था और किस्मत से वो खुला था। विजय ने वो दरवाज़ा खुला और दामिनी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, कई बार मंजिल इतनी भी दूर नहीं होती है जितना हम सोचते हैं, बस हिम्मत करके कदम बढ़ाने की देर होती है। वो तो ठीक है लेकिन मेरी बेटी उनके कब्जे में है, हम वहाँ से निकल गए तो वो वामिका को कुछ कर तो नहीं देगा ना, दामिनी ने घबराकर कहा। वो वामिका को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी, करना होता तो अब तक कर चुका होता, उसे भी वापस ले आएंगे, पहले खुद तो बाहर निकले, विजय ने जवाब दिया। दामिनी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी फिर भी विजय जबरदस्ती उसे बाहर लेकर गया। वो दोनों बाहर तो निकल गए थे लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वहां काफी सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी लेकिन सबकी सब लॉक थी। तभी विजय की नज़र एक स्कूटी पर गई जो कि वहां के हाउस हेल्पिंग स्टाफ यूज करते थे। विजय ने जैसे तैसे करके उसे स्टार्ट किया और पीछे दामिनी को बिठा लिया था। विजय ने स्कूटी स्टार्ट कर ली थी, उसने हॉर्न बजाया तो बाहर गेट पर मौजूद गेटकीपर कंफ्यूज हो गया था। उसके हिसाब से हाउस हेल्पिंग स्टाफ ही स्कूटी यूज करता था इसलिए उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया था। गेटकीपर देखते रह गया और विजय दामिनी को लेकर वहां से निकलने लगा। उसने पीछे से शूट भी किया था लेकिन विजय और दामिनी वहां से निकल चुके थे।